हरे कृष्ण। तो आज हम गौर पूर्णिमा महोत्सव के अंतिम दिवस जगन्नाथ मिश्र महोत्सव मना रहे हैं। साधारणतः ये प्रश्न उठता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके हम अनुयायी हैं उनको हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं, कृष्ण से अभिन्न मानते हैं। साधारणतः प्रश्न लोगों में ये आता है, बार बार कभी पूछते हैं कि प्रभु रामचंद्र को तो हम जानते हैं, कृष्ण को हम जानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को कैसे आप भगवान मानते हो, कहां ये शास्त्र में वर्णन है, कैसे समझा जाए, गीता मानते हैं, भागवत मानते हैं, पर खास हम चैतन्य महाप्रभु को साधारणतः लोग एक महान भक्त मानते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा भक्ति का आंदोलन शुरू किया, इतना जानते हैं, पर भगवान मानना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानना, सारे अवतारों का सार मानना, ये थोड़ा कठिन होता है लोगों के लिए। तो आज मैं संक्षिप्त रूप में भागवत में ये जो वर्णन है कलयुग के अवतार के बारे में, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में वहां वर्णन है गीता और भागवत दोनों में, खास करके इसका हम वर्णन करेंगे। गीता में हम सबको मालूम है कि भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। हर युग में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में, तो कलयुग में कौन है ये अवतार, ये प्रश्न श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में ये बहुत सुंदर वर्णन होता है, जहां परीक्षित महाराज निमि जो मिथिला के नरेश थे, वो करभाजन ऋषि जो नवयोगेंद्र महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्र में से पहले थे भरत महाराज, और तत्पश्चात जो बाकी के 9 थे वो थे नवयोगेंद्र, और बाकी जो 80 थे 90 वो अलग अलग ब्राह्मण का वर्णन है, पर ये जो खास 9 है इनको नवयोगेंद्र मानते हैं, और उनमें से एक है करभाजन ऋषि। तो मिथिला नरेश निमि, महाराज निमि करभाजन ऋषि से प्रश्न पूछते हैं कि कस्मिन काले च भगवान किम वर्ण कीदृशो नृभि नामना वा केन विधिना पूज्यते तद इहोच्यताम। राजा निमि ने पूछा भगवान प्रत्येक युग में किन किन रंगों तथा रूपों में प्रकट होते हैं, और वे किन नामों तथा किन किन प्रकार के विधानों द्वारा मानव समाज में पूजे जाते हैं। प्रभु रामचंद्र का रंग जो था दूर्व घास के समान हरे रंग का था, भगवान श्री कृष्ण श्यामल वर्ण के थे, सांवले वर्ण के। तो इस तरह से ये वर्णन है यहां कि किन रंगों तथा किन रूपों में अलग अलग युग में प्रत्यक्ष होते हैं, किन नामों तथा किन किन प्रकार में के विधानों द्वारा मानव समाज में वो पूजे जाते हैं। तो शिखर भाजन ऋषि कहते हैं कृतम त्रेताम द्वापरम च कलिरित्येषु केशवः नाना वर्ण विधाकारो नानैव विधिनिज्यते। शिखर भाजन ऋषि ने उत्तर दिया, कृतयुग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों युगों में प्रत्येक में भगवान केशव विभिन्न वर्णों, नामों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और विभिन्न विधियों से पूजे जाते हैं। तो जो लोग उत्सुक हैं सत, त्रेता और द्वापर के युग के अलग अलग अवतार, उनके रंग, उनके कार्यकलाप, उनके नाम और किस विधि से उनको पूजा जाना है, वो आप 11वें स्कंद के 5वां अध्याय पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है इसका। पर आज हम उसको, उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं कलयुग के अवतार कौन है भागवत के अनुसार। तो वहां वर्णन होता है, द्वापर युग का वर्णन करने के बाद अब कली युग का वर्णन करते हुए, कलयुग के अवतार के बारे में वर्णन करते हुए करभाजन ऋषि कहते हैं, इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा श्रुणु। हे राजन, इस तरह से द्वापर युग में लोग ब्रह्मांड के स्वामी का यशोगान करते थे, पूरा वर्णन हो गया है। कलयुग में भी, कलावपि, कलयुग में भी लोग शास्त्रों के विभिन्न नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। अब कृपा करके आप मुझसे इसके बारे में सुने। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि कलावपि, कलयुग में भी, इसका मतलब सबको मालूम है कि कलयुग में प्रायशः कोई भगवान को जानता ही नहीं, पूजना तो दूर की बात। तो इसीलिए करभाजन ऋषि कहते कलव अपि, कलयुग में भी पूजा करते हैं भगवान को। इसीलिए भागवत में शुरुआत में आता है, प्रायेण अल्पायुष कलव अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मत यो मंद भाग्य ही उपद्रता। कलयुग का वर्णों का, लोगों का वर्णन है, कोई उत्सुकता नहीं रहता। तो इसीलिए पूछ रहे हैं कलावपि, के कलयुग में भी पूजा करते हैं। और नाना तंत्र विधानेन, क्योंकि कलयुग में वेदों का सारा जो नियम है पालन करना बहुत ही कठिन है। कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में जो शुद्धता उतनी नहीं है लोगों में, इसीलिए नाना तंत्र विधानेन का मतलब है वैष्णव तंत्र, नारद पंचरात्र इत्यादि, जहां सारे जो वैदिक नियम है उसको बहुत सरल कर दिया गया है, केवल दो चीजों पे जोर दिया गया है, और वो है नाम का संकीर्तन, नाम जप और श्री विग्रह की सेवा। तो इस तरह से इस नियोग में जो जोड़ दिया, नाना तंत्र विधाने न कलावपि यथा श्रृणु। तो क्यों कलयुग में भगवान के जो नाम रूप इत्यादि वर्णन किए गए हैं पर प्रायश लोगों को क्यों नहीं ये मालूम, इसका वर्णन प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में भगवान को नरसिंह देव की प्रार्थना करते हुए एक सुंदर श्लोक कहते हैं। कहते हैं प्रभु, नरसिंह देव को कहते हैं संबोधित करते हुए, इत्थम नृतिर्यग ऋषि देव झषावतारई लोकान विभायसी हंस जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुष, सुनिए, धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्य छन्न कलौ यद अभवत अनुयोगतस्त्वम। हे प्रभु, इस तरह आप मनुष्य, कभी कभी भगवान मनुष्य रूप में आए, प्रभु रामचंद्र, प्रभु भगवान श्री कृष्ण पशु के रूप में आए। पशु के रूप में कैसे, वराह देव, कूर्म देव, फिर संत देवता वामन देव, मछली या कच्छप, झषावतारे मतलब पानी में रहने वाले, इस तरह रूप में विविध अवतार लेते हैं और इस तरह विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं तथा असुरों का वध करते हैं। हे प्रभु, आप युग के अनुसार धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, युग के अनुसार धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप अपने को भगवान होने की पुष्टि नहीं करते, अतएव आप त्रियुग अर्थात तीन युगों में प्रकट होने वाले कहलाते हैं। ये वाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी गोपीनाथ आचार्य के सामने रखा। जब गोपीनाथ आचार्य ने बोला कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, आप क्यों नहीं पहचान रहे हो, आप उनको सिखा रहे हो वेदांत, वो तो साक्षात वेदांत कृत वेद विदेव चाहम वेदांत के रचना करने वाले हैं वो, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो वेदों में बहुत ही निपुण थे, उन्होंने कहा कि भगवान का नाम त्रियुगी। क्यों त्रियुगी? क्योंकि तीन युगों में जब वो प्रकट होते हैं तो बताते हैं कि मैं भगवान हूं, पर कलयुग में जब भगवान अवतरित होते हैं तो छन्नावतार, छन्न अवतार, छन्न मतलब ढके हुए, अपने आप को भगवान घोषित नहीं करते हैं। छन्न छन्न कलौ, प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं सातवें स्कंद में नरसिंह देव को प्रार्थना करते हुए, छन्न कलौ। क्यों क्यों भगवान घोषित नहीं करते कलयुग में? क्योंकि कलयुग में हर एक व्यक्ति अपने आप को भगवान घोषित करता है, कौन सी बड़ी बात है, तो घोषित नहीं करते, कार्य करके दिखाते हैं, और वो आप करके दिखाओ तब देखेंगे, ये अंतर है। कलयुग में अपने आप को भगवान घोषित नहीं करते, बल्कि क्यों? क्योंकि दूसरा ये भी कारण है, वो भक्त के रूप में आए हैं, और भक्ति, भगवान की भक्ति जब भगवान खुद सिखाए उससे अच्छा कौन उदाहरण हो सकता है। इसीलिए पहचानना बहुत कठिन है। कृष्ण को सब मानते हैं, प्रभु रामचंद्र को सब मानते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान मुश्किल। पर करभाजन ऋषि प्रहलाद महाराज कर रहे हैं छन्न कलौ यद भवत, तो अब वर्णन कर रहे हैं करभाजन ऋषि, अब वो कहते हैं कि उनका वर्ण कैसा होगा, क्योंकि यहां पूछा गया वर्ण क्या होगा, उनके कार्यकलाप कैसे होंगे, तो वर्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। कृष्ण वर्णम, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार को पूजा करते हैं, करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णयति, हमेशा कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण वर्णम। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा उनके मुख से सततम कीर्तयंतो माम, भगवान कहते गीता में हमेशा कीर्तन किया करते थे हरिनाम। तो कृष्ण वर्णम, कृष्ण को हमेशा गुणगान करेंगे। पर त्विषा अकृष्णम, त्विषा यानी रंग की, उनकी शरीर की अंग की जो कांति है वो अकृष्णम, अकृष्णम मतलब कृष्ण के वर्ण का नहीं होगा, सांवला वर्ण का नहीं होगा, तो फिर कौन सा वर्ण का होगा? फिर से भागवत में दशम स्कंद में जब भगवान कृष्ण जन्म लिए, अवतरित हुए, तब नंद महाराज ने गर्ग मुनि को बुलाया अपने यहां उनका नामकरण करने के लिए, भगवान कृष्ण और राम बलराम जी का नामकरण करने के लिए बुलाया। तब गर्ग मुनि कहते हैं, भागवत में वर्णन है कि नंद महाराज जी, आपका ये जो बालक है ये चार युग में चार अलग वर्ण से आता है, ये साक्षात नारायण जैसा है और ये चार युगों में चार वर्ण से आता है। बोले श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण और पीत वर्ण, अभी सांवला है, यानी द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण आए सांवले रंग के, तो श्वेत रक्त सांवले और फिर पीतवर्ण। तो श्वेत जो है वो करभाजन ऋषि ने वर्णन किया है, श्वेत वर्ण हुआ सतयुग में, रक्त वर्ण हुआ त्रेता युग में, और द्वापर में तो सांवले वर्ण के हुए भगवान श्री कृष्ण। तो सवाल उठता है पीत वर्ण कब? तो अगला है कलयुग। तो त्विषा अकृष्णम, पीत वर्ण क्यों नहीं बोले? क्योंकि छन्नाव अवतार है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, अकृष्णम कृष्ण के वर्ण नहीं होंगे, दूसरे वर्ण होंगे, यानी पीत वर्ण। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अस्त्र लाते हैं हर बार, परशुराम जी आए फरसा लेके आए, प्रभु रामचंद्र आए धनुष बाण लेके आए, भगवान श्री कृष्ण आए सुदर्शन लेके आए, हरेक अवतार आप देखेंगे कुछ ना कुछ अस्त्र लेके आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पर सांगोपांगास्त्र पार्षदम, इनके अस्त्र क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र क्या है? स अंग उपांग अस्त्र पार्षदम, अंग यानी उनके विस्तृत रूप, तुरंत विस्तृत रूप, जैसे नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य इत्यादि अंग, उपांग यानी उनके सेवक यदा शिवास पंडित, और अस्त्र उनका अस्त्र था उनकी शारीरिक सुंदरता। अस्त्र पार्षदम, और अपने सारे पार्षदों को लेके आएंगे और क्या करेंगे, उनके कार्यकलाप क्या होंगे? यज्ञई संकीर्तन प्रायई, संकीर्तन करेंगे, संग में आकर कीर्तन करेंगे। यज्ञई संकीर्तन प्रायई यजंति ही सुमेधसः, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति इनको पहचान पाएंगे और इनको इनकी शरण जाएंगे। सुमेधसः, इस तरह से महाभारत के जो विष्णु सहस्र नाम है उसमें भी वर्णन है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी, दो लीला है, भगवान के सन्यास के पहले का लीला और सन्यास के बाद का लीला। सन्यास के पहले का लीला सुवर्ण वर्णो, सुवर्ण वर्ण पीत वर्ण, हेमांगो तप्त कांचन हेम जैसा वर्ण, वरांगस चंदनांगदी हमेशा चंदन से बहुत सुंदर से सजे धजे हुए, नवद्वीप चंद्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आप देखेंगे वर्णन है कितने सुंदर, हमेशा सज धज कर। नटवर बहुत सुंदर से नृत्य करते थे। और दूसरे भाग में आता है सन्यास के बाद, सन्यास कृत शम शांतो निष्ठा शांति परायण, सन्यास कृत संन्यास ग्रहण करेंगे वो, विष्णु सहस्र नाम में वर्णन है संन्यास कृत। कौन से अवतार ने संन्यास लिया? कोई अवतार ने संन्यास लिया? संन्यास कृत शम शांत निष्ठा शांति परायण, और जो मायावाद है अलग अलग जो वाद है सबको शांति, शांत परायण सबको शांत कर देंगे, निष्ठा शांति परायण। फिर अब कहते हैं उनको कैसे पूजना चाहिए, हर एक अवतार में कैसे पूजना चाहिए उनको। जैसे कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतोमखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्, व्यासदेव ने वर्णन किया है भागवत में हर युग में अलग अलग से कैसा पूजा थे। कृते यध्यायते विष्णुम, सतयुग में भगवान की पूजा थी ध्यान करने की, एक जगह बैठकर ध्यान करना हजारों सालों तक। त्रेतायाम यजतोमखई, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापरे परिचर्यायाम पूजा के द्वारा, कलौ तद हरि कीर्तनान, कलयुग में उनको तरीका है हरि कीर्तनान, हरि कीर्तन के द्वारा। तो यहां ये दो श्लोक बहुत सुंदर से वर्णन करते हैं कि कैसे उनको पूजना चाहिए, कैसे उनकी शरण जानी चाहिए। ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ये महापुरुष महाप्रभु, इनका नाम विश्व में जाने जाएंगे, ये महाप्रभु महापुरुष। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्, उनके चरण कैसा जाना चाहिए? ध्येयम सदा, हमेशा उनका ध्यान करना। कीर्तनीय सदा हरि, उन्होंने सिखाया। हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हमेशा कीर्तन करते हैं। पूरे विश्व भर में ये आंदोलन जो है कैसे क्या जाना जाता है, हरे रामा हरे कृष्णा। और पूरे पाश्चात्य देश में लोग इस संस्था को जानते हैं हरे कृष्णास, द हरे कृष्णास। क्यों? क्योंकि हमेशा हरे कृष्णा करते, ध्येयम सदा कीर्तनीय सदा हरि। इनका एक ही काम होता है हरे कृष्णा। कोई पैदा हुआ तो हरे कृष्णा, कोई मर गया तो हरे कृष्णा, शादी हुआ तो हरे कृष्णा, बच्चा हुआ तो हरे कृष्णा, नामकरण हरे कृष्णा। अरे आप हरे कृष्णा के अलावा कुछ लेते नहीं क्या? कभी कभी लोग पूछते हैं। एक्चुअली समझ लेना, आपका गुणगान हो रहा है, आप एग्जैक्टली भागवत का द्वारा पूजा कर रहे। अगर आप कोई कहता है ये तुम लोगों को क्या हरे कृष्णा के अलावा कुछ आता नहीं क्या, इसका मतलब सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठकर आपका गुणगान कर रही है। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो कुछ गड़बड़ी है हमने, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं हम। ध्येयम सदा, और ये हरिनाम संकीर्तन नाम जब से क्या होता है, परिभव घ्नम। परिभव मतलब भौतिक संसार के सारे तकलीफ, और सबसे बड़ा समस्या भौतिक संसार का है ईर्ष्या भाव। परिवार के अंदर ईर्ष्या एक दूसरे के प्रति, पड़ोसी के साथ ईर्ष्या, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ ईर्ष्या, एक देश का दूसरे देश के साथ ईर्ष्या, इस तरह से ईर्ष्या के कारण हमेशा झगड़ा कलह। कलह ये कलयुग का लक्षण है, मूल कारण है ईर्ष्या भाव हृदय में। परिभवा घ्नम, पर अगर हरिनाम लेने लगेंगे तो धीरे 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 में क्यों हम हार जाते हैं, माया की लड़ाई से हम हार जाते हैं, पराभव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया के वश में आ जाते हैं, मदमात्सर्य। पर जो हरिनाम लेता है, इसमें इतनी शक्ति है चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए युग धर्म में, इतनी शक्ति है परिभव घ्नम, उस शत्रु को जो करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय में बैठकर हमको उसका गुलाम बनाकर हमें बार 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 इस दुनिया में बांध के रखा है, उसको काटकर हम वापस भगवत धाम जा सकते हैं। परिभवा घ्नम, कैसे? अभीष्ट दोहम, अभीष्ट अपनी अभीष्ट सिद्धि उसको प्राप्त कराता है, देता है। वो क्या? कृष्ण प्रेम। चैतन्य महाप्रभु का जो तरीका है शिक्षाष्टकम, हम शिक्षाष्टकम गाते हैं, शुरुआत कैसे है? चेतो दर्पण मार्जनम। ये जो शिक्षाष्टकम आप पढ़ेंगे, पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक नाम का गुणगान। सात सात फायदा है। जहां हम टेप रिकॉर्डर खरीदते हैं, इसमें रेडियो भी है, टेप रिकॉर्डर भी है, और हाँ जो भी कुछ भी है, बैटरी है, जो भी है, थ्री इन वन। इस तरह से ये हरिनाम जो है सेवन इन वन। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन करता है। भव महा दावाग्नि निर्वापणम, परिभवाग्नम। भव महा दावाग्नि, अग्नि जो जल रही है काम क्रोध लोभ इत्यादि की, इसको शांत कर देता है धीरे धीरे धीरे, पानी मारने जैसा है, फायर ब्रिगेड। भव महा दावाग्नि निर्वापणम। दूसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय, परम श्रेय जो है, जो कमल है हमारी चेतना संकुचित हो गई, आच्छादित, आच्छादित चेतना को धीरे धीरे संकुचित, संकुचित से थोड़ा थोड़ा विकसित और विकसित से प्रफुल्लित, खिल जाता है हमारी चेतना शुद्ध प्रेम का। आदव श्रद्धा आदव साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम, खिल गया। तो इस तरह से श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जिस प्रकार सूरज के आने से कमल धीरे 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 खिल जाता है पूरा, इस तरह से कृष्ण सूर्य समान, जब कृष्ण का सूर्य हमारे हृदय में हरिनाम के रूप में आता है तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, अपने आप क्या सही है क्या नहीं है समझ में आ जाता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, हमारे एक भक्त हरिनाम करते थे, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बिना मांस के उनका चलता ही नहीं था। चार महीने के जप करने के बाद आए हमारे यहां और बोले, प्रभु जी आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोले क्या? बोले मच्छर को मारना है कि नहीं मारना है? सही में? बोले कभी कभी हम मैं पढ़ता रहता तो मच्छर बैठ जाता है, मच्छर को मारू या नहीं मारू? हां बेचारा अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, क्यों मारू उसको? चार महीने के जप में पहले एक एक मुर्गी काटते, बिना कोई हिचकिचाहट के काटता तो सोचता भी नहीं था उसमें आत्मा हो सकता है, और आज एक मच्छर को मारू कि नहीं मारू, कैसा परिवर्तन हो गया। विद्यावधु जीवनम, अपने आप जैसे जैसे हृदय शुद्ध हो जाता है, दूसरे जो आवाज हैं, काम की आवाज, क्रोध की आवाज, लोभ की आवाज, मोह की आवाज, धीरे 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 उसका खाना बंद हो जाता है और परमात्मा का आवाज जोर होने लगता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियंस। कभी कभी आवाज आता है अंदर से, ए क्या कर रहा है, गलत है ये, गलत है, सोचो फालतू में क्यों मारता है, क्यों बंधन में पड़ रहा है। पहले ये आवाज थी पर बहुत कम थी, काम का आवाज, खा ले, पूरी दुनिया खा रही है, हाँ हाँ सही बात, करेक्ट। पर धीरे धीरे हरे कृष्णा तो वो उसका आवाज सब कम हो जाता है, क्योंकि उनको खाना बंद हो जाता है। जब हरे कृष्ण लेते हैं तो आत्मा को खाना मिलता है, और दूसरे जो शत्रु बैठे हुए हैं मित्र के रूप में, उनका खाना बंद हो जाता है, तो बेचारा उनका आवाज भी ढीला पड़ जाता है, खाओ ना खाओ ना। और हरे कृष्णा बोलने से परमात्मा का आवाज, नहीं नहीं खाने का, पहले उल्टा था, मत खाओ मत खाओ, खाओ ठीक है खाता हूं भाई। पर अभी धीरे धीरे श्रेय कैर विद्यावधु जीवनम, परमात्मा का आवाज जोर होता है और दूसरे आवाज धीरे धीरे कम हो जाते। नहीं तो हमारे अंदर क्या शक्ति है इन सब चीजों को रोकने के लिए? करोड़ों बुरे विचार बार बार आते हैं, उनको रोकने की क्या शक्ति है? हम लोग तो कठपुतली हैं माया के। विद्यावधु जीवनम और आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपदम, एक अलग सा आनंद आता है, इसको वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, जो चखा है उसी को मालूम है। मूकवत, नारद मुनि कहते हैं मूकवत, एक गूंगा आदमी अगर कुछ चख लेता है और उसको बोलना है, क्या बोलेगा बेचारा, बोल नहीं पाता वो। वर्णन करो ऐसे आनंदाम्बुधिवर्धन, इसका सबूत क्या है? सबूत यह है कि बार बार हम उसको चखने आते हैं इधर, और दूसरी चीज फीके लगने लगते हैं। वो चीज जो हमें पागल कर रहा था उसके पीछे नहीं पागल हो रहे अभी, अब भागते आते हैं उस रस का आस्वादन करने के लिए। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, हरिनामामृत हरिकथामृत, ये अमृत का आस्वादन। अमृत कैसे मालूम है ये अमृत? क्योंकि मृत जो अमृत पीता है उसको मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु का भय दूर हो जाता है। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। पूरी दुनिया मृत्यु से भयभीत है, पर भक्त कहता है कि मृत्यु जब आएगा उसका काम करने दो, मैं अपना काम करते रहूंगा। पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यह तरीका है श्री चैतन्य महाप्रभु का, बहुत सरल हमको कोई इन चीजों की जरूरत नहीं है, पर लोगों को समझाने के लिए जो नहीं समझ पाते हैं कि इतना सरल तरीका भगवान के अलावा और कौन दे सकता है इस कलयुग में, जहां हर एक व्यक्ति हमें गलत फहमी और गलत मार्गदर्शन करके पथभ्रष्ट कराने में लगा हुआ है। तो यह तरीका है। और दूसरे श्लोक में कहते हैं नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति, अपने नाम के अंदर खास करके कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरा ताकत डाल दिया है, शंख चक्र गदा पद्म सबका ताकत हरिनाम में डाल के दे भेज दिए। बस हरिनाम लो, वही हरिनाम असुरिक प्रवृत्ति के लिए गदा और चक्र के रूप में काम करेगा, और साधु प्रवृत्ति हमारे अंदर जो है उसके लिए शंख और पद्म का काम करेगा। 4 in 1, शंख चक्र गदा पद्म इन 1, ये हरिनाम। सारा अस्त्र शस्त्र उसके अंदर डाल दिए, नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान की सारी शक्ति, कृपा शक्ति और असुरों को मारने की शक्ति, सब शक्ति नाम के अंदर डाल दिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो अंदर बैठे हुए हैं उसको वध कर देंगे, और प्रहलाद जैसी हमारी भावना है अंदर थोड़ी बहुत, जिसका आवाज बहुत कम है, उसको खाना खिला के थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे उसकी। तो नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, क्यों ध्येयम सदा, अगर सदा लेना है तो कोई नियम नहीं है। दूसरे युगों में दूसरे मंत्रों के लिए बहुत सारे नियम है, संध्या वंदनम संध्या के समय करना चाहिए, कभी भी नहीं, रात को सोते वक्त नहीं, मल विसर्जन करते वक्त नहीं, पर ये जो हरिनाम है ध्येयम सदा, और सदा लेने के कारण कोई इसका नियम नहीं है, कभी भी किसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति कहीं भी ये हरिनाम ले सकता है। क्यों, ये महामंत्र है, इतना शुद्ध है कि कोई भी चीज इसको अशुद्ध नहीं कर सकती। एतादृशी तव कृपा, भगवान ने कितना कृपा कर दिया है, नाम में पूरा शक्ति डाल दिया है, कभी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, एक बच्चा भी ले सकता है, प्रवचन में सब सो जाते हैं, कीर्तन होता है तो सब उठ जाते, बच्चे नाचते आराम से नाचते, कोई तकलीफ नहीं, खुशी से। तो एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमीदृशम इहा जनिना अनुराग, पर हमारा ऐसा पीलिया बीमारी है कि गन्ने का रस भी हमको कड़वा लगता है। तपस्या क्या, हरिनाम लेना है 16 माला, थोड़ा कम नहीं कर सकते प्रभु, 8 नहीं कर सकते? अरे ध्येयम सदा, आपको तो सिर्फ 1.5 घंटे का बोला 24 घंटे में, कम से कम वो भी हमारे लिए तपस्या। एक मनुष्य योनि में भगवत धाम जाने के मौका है सिर्फ 1.5 घंटा देने से, आपको 8-8 घंटा काम गधे के समान काम करने के बाद भी एक शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए पूरा नहीं मिलता है, पर 1.5 घंटे में दिन में 1.5 घंटा डाला तो भगवत धाम जाने के लिए तैयार, उसमें भी आलसपन। ये कलयुग की बुद्धि ऐसी हमारी, क्या करें, उसमें भी आलस। देख भाई भगवत धाम जाएंगे, 1.5 घंटा देना, टाइम नहीं मेरे पास। दुर्दैव मीदृशम यहा जनिना अनुराग, फिर इसमें अनुराग नहीं है, क्यों, अहंकार, मिथ्या अहंकार। वो अहंकार को दूर करने के लिए तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानि नामानदेन कीर्तनीय सदाहरि, हरिनाम करने की इच्छा होती है पर सबसे बड़ा बाधा है एक अहंकार का पर्वत, हिमालय पर्वत सामने खड़ा हो जाता है, और इस पर्वत को हटाना बहुत मुश्किल है। एक ही तरीका है, तृणादपि सुनी चेन, जब तक व्यक्ति नम्र नहीं होगा ये हरिनाम नहीं ले पाएंगे, ध्येयम सदा नहीं कर पाएंगे। तरोरी व सहिष्णुना, थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है, आप हरिनाम लेंगे ध्येयम सदा हमेशा करने के लिए तो शारीरिक बाधाएं आती हैं, बहुत नींद आ रहा है अभी, मन इधर उधर भाग रहा है, वो बाधाएं हैं, हिमालय जैसी बाधाएं, समय मनाना या जाग के ध्यान से करना, फिर ज्यादा हरिनाम लेने लगा तो परिवार के लोग बोलते क्या ये साधु बन रहे क्या, हरे कृष्णा करते रहता हमेशा। या मित्र लोग व्यंग्य करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, क्या ये हरे राम कृष्णा, सौ चूहे मारकर बिल्ली हज को चलिया। एक भक्त आए और बोले, क्योंकि पहले वो सब सारा काम करते थे जगाए मदाए जैसे काम, और बाद में हरे कृष्ण करने के बाद सब ठीक हो गए और दूसरों को बोलने लगे हरिनाम करो हरिनाम, वाह हरिनाम करो, मालूम है सौ चूहे मारकर बिल्ली हज को चली। उसको चिढ़ाते थे, वो आके बोला प्रभु जी क्या करूं मैं, बोले हज को जा रहे हो ना तुम, हरे कृष्ण करते रहो बस, चूहा मारना बंद तो किया तुमने, ठीक है बस। तो सहन करना पड़ता है निश्चित रूप से। वो सब करने के बाद भक्तों के संग में आते हैं तो भी थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है, ये भक्त ऐसा क्यों कहता है मेरे को, ये मेरे को ऐसा घूर के क्यों देखता है, ये ठीक से प्रसादम कूपन देखते वक्त ऐसा क्यों देखता है, प्रसादम थोड़ा कम क्यों देता है, समस्या होगी क्या। हर एक व्यक्ति बद्ध जीव है, यहां कोई उतर के नहीं आया यहां उद्धार करने के लिए। आप अगर अस्पताल में जाओगे और कहोगे प्रभु जी यहां तो सब के सब बीमार लगते हैं, कोई तष्ट पुष्ट व्यक्ति दिखता नहीं, बोले गलत जगह, स्वास्थ्य व्यक्ति को देखने के लिए, स्वस्थ व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल में नहीं जाते। जेल में जाके कहोगे यहां एक भी सज्जन नहीं दिखता है प्रभु जी, क्यों गलत जगह देख रहे हो। इस तरह से भौतिक संसार में आकर शुद्ध भक्त को देखना बड़ा मुश्किल है, एक दो उतर के आते हैं हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए, पर नहीं तो छोटे मोटे सब हैं, सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम एक चीज है, सब लोगों ने माना है, अस्पताल में जो आया है कम से कम उसने माना है मैं बीमार हूं डॉक्टर कुछ तो करो उससे, वो तो अच्छा है कम से कम। कि बाहर खड़े हुए बीमार हो गया है मर रहा है, बोलता है मैं बीमार नहीं हूं, एक्चुअली सब ठीक ठाक है, मेरे अंदर से कैंसर खाया जा रहा है और बोलता है मैं बीमार हूं, जब तक लुढ़कता नहीं, लुढ़कने के बाद भी बोलता है अभी भी मैं ठीक हूं। उससे अच्छा है वो लोग हैं कम से कम डॉक्टर के पास गए हैं, एडमिट हुए हैं, अब जो भी दवाई देगा दो, सुधरना चाहता हूं मैं, ठीक है। कम से कम जितने हैं यहां बीमार हैं चलेगा, कम से कम हमने सब स्वीकार किया है हम बीमार हैं, हमको हरिनाम की औषधि चाहिए, भवौषधि, हम यहां औषधि लेने आए, यानी हम मानते हैं हमारे बीमारी है, हमको मालूम है कौन से डॉक्टर के पास जाना है। तो सहनशीलता होनी ही चाहिए, नहीं तो प्रगति हम नहीं कर सकते आध्यात्मिक जीवन। तरोरिव सहिष्णुना, क्यों तरु, तरु मतलब पेड़, पेड़ के जैसा सहनशील होना ही पड़ेगा। पेड़ बेचारा सबको परछाई देता है, वो उस परछाई के नीचे सोते हैं, सोने के बाद डाल काट के आग लगा के हाथ भी गर्म करके थोड़ा हाथ सेक के चले जाते, या पेड़ भी लेटे रहते हैं, उसका फल वल तोड़ते हैं, पत्ते काटते हैं, कुछ भी करते हैं, और बहुत ज्यादा पड़ गया तो पेड़ को ही काट के बाद में बेच देते हैं पैसा कमाने, कुछ भी हो। तो पेड़ तरोरिव सहिष्णुना, ठंडी में गर्मी में पेड़ का आश्रय लेते हैं हम लोग, बारिश में, और पेड़ का हरेक अंश उपयोग है। पेड़ देखिए, पेड़ एक ऐसा है जिसका पत्ता, जिसका फल, जिसका फूल, जिसका डाली, जिसके केले जैसे का तो जो धड़ है उसको भी काट, जड़ भी किसी का खाते हैं आलू तो कुछ पेड़ का जड़, कुछ पेड़ का धड़, किसी का डाली, किसी का पत्ता, किसी का फूल फल। पेड़ एक ऐसा है जिसका हरेक अंग जो है उसका उपयोग हो जाता है, खास करके नारियल पेड़। तो इस तरह से तरोरिव सहिष्णुना, सिर्फ देते रहता है पर कोई उसको कभी कभी पानी भी नहीं डालता है। फल होता है तो खाने के लिए सब आते हैं, पानी डालने के लिए कोई नहीं आता, फिर भी बेचारा खड़े रहता। तरोरि ऐसा जब तक नहीं होंगे तब तक ध्येयम सदा नहीं हो पाएगा। अमानिना मान देन, अमानिना मान की जब अपेक्षा रखोगे तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, अभी हताश हो जाओ, निराशा आएगी, क्योंकि हम अपने आप को बहुत मानते हैं, उतना मान नहीं दे सकते लोग, ईश्वरो हम, वो तो मानता है मैं कि भगवान हूं, पूजना चाहिए, उतना कौन देगा, मान देना, पर लोगों को हम नहीं समझ पाते, ठीक है मान दे दो, क्या क्या जाता है, कीर्तनीय सदा हरि, ताकि हम कीर्तन का हमेशा कर सकें। अगर ये करेंगे और हरि नाम लेते रहेंगे, कीर्तनीय सदा हरि, सहनशील होके, नम्र होके, लोगों को सम्मान देके, मान की अपेक्षा न करते हुए कीर्तनीय सदा करेंगे, तो धीरे 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 एक स्तर पर आएंगे, जब भगवान कहेंगे क्या बेटा इतना हरिनाम लिया क्या चाहिए, न धनम, अनुयायी न जनम, अच्छी स्त्री, न सुंदरी कविताम, तो क्या चाहिए बेटे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरेत भवतात भक्ति रहे तुई तवी, उस स्तर पर आएंगे, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति होगी जब दृढ़ता पूर्वक हरिनाम लेते रहेंगे। तो इस तरह से ध्येयम सदा परिभवाग्नम, तीर्थास्पदम, तीर्थास्पदम, तीर्थ आस्पदम, तीर्थ स्थान, सारे तीर्थों का स्थान वहां आ जाता है जहां संकीर्तन होती है। आप जान लीजिए, अलग से वृंदावन ये वहां वहां कोई जाने की जरूरत नहीं है। पाश्चात्य देश में मैं रशिया गया था, रशिया में एक बूढ़ी औरत है, जिंदगी में वो शायद कभी 60,000 नहीं कमा सकती इंडिया में आने के लिए, मायापुर जाने के लिए या वृंदावन जाने के लिए, पर उसके घर में गौरनीताएं हैं, उनकी सेवा करती हूं, और एक एकड़ जमीन है, वो एकड़ में जितना भी फसल वसल उगता है वो पूरे गांव में अकेली वो भक्त है, काट वोट जो भी फसल करती है, भोग लगाती है, फूड फलाई करती है, सबको खिलाती है प्रसाद, उनको मालूम ही नहीं प्रसाद, उनको लगता है कि हर रोज खिचड़ी खिलाती है, बस खा के जाते हैं वो लोग, बच्चे लोग आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं। और मैं गया था तो पता चला कि उनके गुरु और मेरे गुरु एक ही हैं, सीधा दंडवत प्रणाम कर दी वो मुझे, बोले मैं अपनी गुरु को तो देख नहीं पाऊंगी, जिंदगी में कभी आऊंगी नहीं मैं इंडिया, और वो यहां नहीं आते तो आपको प्रणाम, आप उसको ट्रांसफर कर देना होता, सीधा दंडवत, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, बस मेरा जीवन सफल हो गया, पूरी खुश, मानो वृंदावन में है वो। तीर्थास्पदम, जो भगवान के चरण का आश्रय ले लिया, सारे तीर्थ स्थान को वो भ्रमण करके आ गया। क्यों तीर्थ स्थान जाते हैं, शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के बाद कृष्ण प्रेम आता है, वो कृष्ण प्रेम ऑलरेडी उसे प्राप्त है, जहां रह रही है वो सेवा कर रही है, गौर निताई की सेवा कर रही है, तीर्थास्पदम, जहां गौर निताई के चरण कमल है वो तीर्थास्पदम, सारे तीर्थ स्थान वहां है। हम तीर्थ स्थान इसलिए जाते हैं ताकि वहां जाके स्फूर्ति मिले, उत्साह मिले, ताकि हमारी विग्रह की हम सेवा ठीक से करें, बस। पर अगर वो श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं, तीर्थास्पदम, तीर्थ का मतलब है सारे भक्तगण भी, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, गुरु की आज्ञा के अनुसार अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं, गौर निताय की सेवा कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि सब अपने आप प्रसन्न हो गए, सारे तीर्थ स्थानों का जाने का लाभ मिल गया, सदगुरु को प्रसन्न कर दिए, सब कुछ हो गया। तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम, अरे केवल बद्ध जीव नहीं, शिव विरिंचिनुतम, शिव जी और ब्रह्मा जी भी उनकी स्तुति करते हैं। चैतन्य लीला में शिव जी अद्वैत आचार्य के रूप में आए, ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आए, और वो भी हरिनाम के द्वारा और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण का आश्रय लिए। तीर्थास्पदम शरण्यम, शरण जाने वो ही एकमात्र योग्य है। भृत्यार्थिहम, भृत्य यानी उनके जो सेवक हैं, अर्थिहम, अर्थी यानी उनके दुख, हम मतलब खत्म कर देते हैं, भृत्यार्थिहम उसके उनके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे पतित पावन अवतार, खास करके कलयुग के लिए अवतार, युगावतार है ये, इनके द्वारा हम कृष्ण को जान सकते हैं, इनके बिना कृष्ण को जानना बड़ा प्रैक्टिकली नामुमकिन है। भृत्यार्तिहम प्रणत पाल, प्रणत मतलब जो उनको प्रणाम करता है, उनका पालन पोषण सब उनके हाथ में आ गया। श्रद्धापूर्वक जो प्रणाम करता है, नहीं इधर आ रहा था कीर्तन में फिसल के गिर गया और प्रणाम हो गया, उसका भी उद्धार हो जाता है। इतने दयालु हैं। मायापुर ऐसा जगह है जहां अगर सो गए तो करोड़ दंडवत प्रणाम करने का फायदा हो जाता है। एक कदम रखे तो तीर्थ यात्रा सारा तीर्थाटन करने का फायदा मिल जाता है, फायदा ही फायदा। सो प्रणत पाल जो प्रणाम करते हैं उनका पालन करते हैं पूर्ण रूप से। भवाब्धिपोतम जो इनके चरण कमल का आश्रय ले लिया, भव अब्धि, भव अब्धि यानी भव सागर, पोतम, पोतम यानी बोट, एक ऐसा नाम है। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, भगवान के चरण का जो आश्रय ले लिया उसको पकड़ के रखा वो इस भव सागर को पार कर जाता, ऐसा नाम है। तो इसीलिए यही तरीका है, आप हरिनाम ले रहे हैं तो ये सब हो रहा है। ध्येयम सदा परिभवाघ्नम अभीष्ट दोहम, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, तीर्थास्पदम, सारे तीर्थ स्थानों का सार वही है उनके चरण कमल में। शिव विरिंचिनुतम, केवल बद्ध जीवों का नहीं, महान देवता शिव विरिंची या ब्रह्मा जी शिव जी ये भी उनके चरण की आश्रय लेने की इच्छा करते हैं। शरण्यम, शरण लेने योग्य एकमात्र। भृत्यार्तिहम, भृत्य के सारे तकलीफों को दूर कर देते हैं। प्रणतपाल, एक बार भी प्रणाम किया तो पूर्ण रूप से उसका पालन का जिम्मेदारी ले लेते हैं। भवाब्धिपोतम, भवाब्धि को पार कराने वाले ऐसे नाम हैं। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष चैतन्य महाप्रभु के हम शरण लेना चाहते। और फिर एक सुंदर श्लोक है, अंतिम श्लोक में कहते हैं इनके कार्य कैसे होंगे। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैतयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बड़ा सुंदर श्लोक है। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा यानी त्याग देंगे। सुदुस्त्यज, जिसको त्यागना बहुत मुश्किल है इस संसार में, ये अवतार जो हैं आसानी से त्याग देंगे। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, त्यज यानी त्यागना, दुस्त्यज मतलब बहुत ही मुश्किल है, सुदुस्त्यज मतलब बहुत बहुत ही मुश्किल। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, सुर ईप्सित जो देवतागण भी जिसकी इच्छा रखते हैं, ऐसा राज्य लक्ष्मी, ऐसा धन, ऐसा संपत्ति, ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ऐसा शांति, ये सब त्याग देंगे वो। त्यक्त्वा श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए 24 साल की उम्र में, क्या उनका केश, जो नाई जो बाल काटने वाला आया था वो कसम खा लिया, बोला मैं कभी नहीं काटूंगा, इतना सुंदर बाल जिंदगी में मैंने देखने से वो कहा कि मैं कभी नहीं करूंगा मैं। पर महाप्रभु ने इस तरह से उसको मोहित कर दिया कि वो किस तरह से काटा उसी को भी नहीं मालूम। पर ये एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के केश को काटने के बाद उसने कहा, ये केश जो भगवान के सुंदर, ये हाथ जो भगवान के केश को काटे हैं, अब और किसी को मैं स्पर्श नहीं करूंगा, और किसी के केश को स्पर्श करना काटना एक मेरा काम नहीं। तब से वो मिठाई वाला बन गया, और इस हाथ से जो वो मिठाई बनता था बनाता था वो मिठाई इतनी मीठी थी क्योंकि महाप्रभु की सेवा की थी उसने। तो इतने सुंदर केश, भक्त लोग भक्ति में आने के बाद मूछी निकालने के लिए 10-10 साल लग जाता सोचते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं और बहुत आसक्ति रहता है बाल से। अगर पुरुष को इतना छोटे नाक और होंठ के बीच में छोटा सा जो ये सब एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है, इसको काटने में इतना तकलीफ है, तो फिर अगर फिल्म स्टार हो तो उसका जीवन है सब कुछ में। तो ऐसे सुंदर केश और इनका सुंदर स्वरूप, इतने तरह से सजते थे चैतन्य महाप्रभु कि कोई भी नास्तिक व्यक्ति भी मायावादी भी देखते रह जाता था, दंग रह जाता था, स्तब्ध रह जाता था, ऐसी सुंदरता। पर उन्होंने उसको त्याग दिया। ऐसी माता शची देवी जिसका सर्वस्व था अपने पुत्र को प्रसन्न करना, उसके अलावा कुछ नहीं जानती थी वो, पिता नहीं थे, बूढ़ी माता और पत्नी साक्षात लक्ष्मी देवी 16 साल की उम्र में, और सब कुछ पूर्ण रूप से सर्वस्व, इतनी पतिव्रता, इतनी सेवा करने वाली, महाप्रभु ने उनको भी त्याग दिया। और ऐसे उनके मित्र और पार्षद श्रीवास ठाकुर, जो कीर्तन के दौरान उनके पुत्र के गुजरने के बावजूद भी उन्होंने कीर्तन को रोका नहीं ताकि महाप्रभु के कीर्तन का आनंद में बाधा नहीं आए, इतना प्रेम करते थे, इतना महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने जान देने के लिए तैयार। अगर आपके जीवन में एक व्यक्ति भी ऐसा है जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, तो आप समझ लेना आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में हम हमेशा चारों ओर से घिरे रहते हैं हम लोग जो जान लेने के लिए तैयार है, देने वाले बहुत कम हैं। निकटतम रिश्तेदारों में भी, तुम मेरा पीठ खुजला मैं तुम्हारा खुजलाऊंगा, तुम खुजलाना बंद तो मैं भी बंद, मतलब की बातें होती। तो पार्षद पूरे नवद्वीप में इतने सारे महाप्रभु के पार्षद थे जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, इतने प्रेम करते थे। ऐसे व्यक्ति को त्यागना आसान नहीं है। और यश, पॉपुलैरिटी, महाप्रभु ने सुबह एक सूचना दी कि शाम को हम लोग संकीर्तन करेंगे, आ जाओ सब लोग अपना अपना एक क्या बोलते हैं टॉर्च मशाल लेकर। लिटरली लाखों लाखों लोग दोपहर तक एकत्रित हो गए, सूर्यास्त तक लाखों लोग एकत्रित हो गए। ऐसा नहीं कि ट्रक भर के उनको पैसा देकर लाना पड़ा, सिर्फ सूचित किए और अपना मशाल और अपना केरोसिन। ऐसा नहीं कि मैं सप्लाई करेंगे बाबा आ जाओ पैर पड़ के। इतने प्रसिद्ध थे महाप्रभु कि उनके एक कहने पर लाखों लोग, लिटरली असंख्य लोग एकत्रित हो गए। कौन ऐसा चीज को छोड़ना चाहेगा? एक छोटा पॉलिटिशियन अगर पॉपुलर आदमी है नहीं छोड़ना चाहता, एक स्पोर्ट्समैन करियर अच्छा चल रहा है करोड़ों मिल रहा है छोड़ना नहीं चाहता। त्यक्त्वा सुदुस्त्य जसुरे सीतराज लक्ष्मी, पर उसको एक क्षण के अंदर उन्होंने त्याग दिया। धर्मिष्ठ, और धर्मिष्ठ थे वो, ऑफ कोर्स साक्षात भगवान है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, वो जो भी करते हैं वो धर्म ही है एक्चुअली। तो धर्मिष्ठ आर्य वचसा, आर्य के कहने पर यद अगाध अरण्यम, अरण्य चले गए सन्यास लेके। आर्य वचसा, कौन ये आर्य वचसा? जब श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था तो एक बार एक ब्राह्मण आया, बड़े कटु शब्द बोलने वाला ब्राह्मण, और वो दरवाजा खटखटाया, बट महाप्रभु का नियम था कोई दरवाजा प्रवेश नहीं था किसी के लिए, तो जोर जोर से दरवाजा खटखटा। दरवाजा कीर्तन शुरू होने के बाद कौन सुनता दरवाजा खटखटाना, दरवाजा टूट भी जाए तो कोई समझ में नहीं आता। और महाप्रभु का कीर्तन, इतने मृदंग, इतने करताल, और ऐसा प्रेम नाम चल रहा है, तो खटखटाया, बहुत क्रोधित हो गया। अगले दिन जब महाप्रभु गंगा स्नान करने गए तो वहां खड़ा था, अपना ब्राह्मण का धागा लेके, जनेऊ लेके खड़ा था और उसने कहा, निमाय तू मुझे श्रीवास के आंगन में आने नहीं देता, तुझे मेरे हृदय को तूने मेरा मुझे अपमान किया, मैं तुझे शाप देता हूं, तेरा सारा परिवार सुख नष्ट हो जाएगा, तेरा भौतिक सुख नष्ट हो जाएगा। और उसने जनेऊ तोड़ दिया अपने शाप देने के। महाप्रभु मन ही मन बहुत खुश हुए, बोले यही तो चाह रहा था मैं, क्योंकि अभी मेरे को सन्यास लेके जाना है, सब जगह भ्रमण करना है युग धर्म प्रचार करने के लिए। आर्य वचसा, तो इस ब्राह्मण के शब्द को सत्य कराने के लिए, यदगाद अरण्यम, कौन सा अरण्यम, वृंदारण्यम, सन्यास लिए श्री चैतन्य महाप्रभु। माया मृगम दैतयेप्सितम अन्वधावत, क्यों लिए सन्यास, माया मृगम, माया मतलब इस भौतिक संसार में जनस्य मोहोयम अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, और ये मेरा बंगला, और ये मेरी गाड़ी, ये मेरा मोबाइल, ये मेरा लैपटॉप, और भी क्या क्या अप टू डेट टेक्नोलॉजी, नया कुछ भी, और माया मृगम, मृग यति मतलब इच्छा, और इसकी इच्छा रखते हुए आदमी सर्च, सर्चिंग फॉर माया, ढूंढते ढूंढते घूमता रहता है। माया मृगम दैतया, दैतया मतलब बड़े दयापूर्वक, अन्वधावत भागते हुए गए उनके पीछे महाप्रभु, भागते हुए गए, पूरे दक्षिण भारत गए, पूरे वृंदावन गए, इधर गए उधर गए, 6 साल तक भ्रमण करते रहे, और प्रेम के उनके मित्रता के रूप में या उनको मिलने के रूप में गले लगाते थे जबरदस्ती, जैसे गले लगाते थे उनके हृदय में प्रेम भर देते थे, और वो पागल हो जाता था एकदम कृष्ण प्रेम में, और वो किसी गांव में जाता था अपने गांव में, और वो जिसको स्पर्श करता था, गले लगाता था, वो कृष्ण प्रेम में पागल मत मदोन्नत हो जाता था। इस तरह से पूरे दक्षिण भारत को उन्होंने कृष्ण प्रेम में डुबा दिया। तो माया मृगम दैतया ईप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंद। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु है, और आज हम देख सकते हैं पूरे विश्व भर में किस तरह से ये संकीर्तन आंदोलन प्रचार हुआ है, और मेसुमेधसा बुद्धिमान व्यक्ति लोग ले रहे हैं, और उनके अनुयायी और उनके सेनापति भक्त, श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों में चलते हुए, त्यक्त्वा सुदुस्त्य जसुरेप सीतराज्य लक्ष्मी, उन्हें भी त्याग दिया, सुरेप सीतराज्य लक्ष्मी, देवतागण भी चाहते हैं वृंदावन में निवास करना, श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में राधा दामोदर में आराम से निवास कर रहे थे, उनको सम्मान देते थे लोग, स्वामी जी सुखी थे, राधा दामोदर वृंदावन में रूप गोस्वामी के भजन कुटीर के पास रहते थे, हर एक कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि बुढ़ापे में जाके वृंदावन में रहकर अपना जीवन त्याग दे, जीवन की सफलता परिपूर्णता है वो, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, वृंदावन में निवास ब्रजवास, पर उसको उन्होंने त्याग दिया, धर्मिष्ठ क्योंकि धर्म की पालन करने थे उन्हें, आर्य वचसा, कौन से आर्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वचन, उनके वचन थे कि मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को, श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्वभर में अंग्रेजी भाषा में बांटो। यदगाद अरण्यम, कौन से अरण्य, कॉन्क्रीट अरण्य, न्यूयॉर्क के कॉन्क्रीट जंगल, यदगाद अरण्यम, क्यों, माया मृगम, जो लोग माया के पीछे भाग रहे थे, दैतया बड़े दयापूर्वक, ईप्सितम अन्वधावत, और भाग रहे थे प्रभुपाद, 14 बार उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, प्लेन में भी भागते थे उनके पीछे अन्वधावत, ऐ वंदे महापुरुषते चरणारविंद। और ये महापुरुष जो हैं, ये हैं महाभागवत, श्री चैतन्य महापुरुष के महाभक्त। तो इस तरह से आज हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा, उनके चरण कमल का आश्रय मिला है, क्योंकि उनके अनुयायी ने उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए हमें योगदान, हमें उपहार दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है, जैसे मैं कल दोहराया और वही फिर मैं दोहरा रहा हूं, कि इसको समझे सबसे पहले कि हमें क्या मिला है, और उसको बाद उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारे और जितना हो सके यथाशक्ति दूसरों को दे। तब ये गौर पूर्णिमा महोत्सव जो है निश्चित रूप से यशस्वी है। ये हमारा अहोभाग्य है कि हमको युग धर्म युगावतार द्वारा दिया हुआ और एक परम भक्त द्वारा विस्तृत किया हुआ, किरात हूणांध्र पुल्लिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खसादय ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। भगवान के शुद्ध भक्तों की शक्ति ये है कि कितना भी पतित क्यों ना हो, अगर वो भगवान के चरण कमलों का उनके भक्तों के मार्गदर्शन में आश्रय लेता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से ये सुंदर महोत्सव का आज हम अंत कर रहे हैं, अंत यानी शुरुआत। ये उत्सव का अंत यानी अभी उसको उतारने का शुरुआत। तो कृपया इस सुनहरा मौका जो सुनहरे अवतार ने दिया है इसका आप पूर्ण फायदा उठाइए और अपने जीवन को सफल कीजिए। जैसे प्रभुपाद ने कहा, चैंट एंड बी हैप्पी, जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, तो अभी महाकीर्तन उसके बाद महाप्रसाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।